नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल हैं।
स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों के अनुकूल है और इसलिए विगत वर्षों में खेलों में हम सफल रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को प्रायः दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि विशाल बजट के बावजूद मनरेगा ने किसी स्थायी संपत्ति सृजन या गांवों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी कानून श्रमिकों के हित में है, क्योंकि इसमें बढ़े हुए भुगतान, बेरोजगारी भत्ते, विलंबित भुगतान पर ब्याज और 100 के तुलना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अब 3 वर्ष से कम अवधि वाले स्टार्टअप भी अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का लाभ उठा सकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभाग के 41वें स्थापना दिवस समारोह में नई दिल्ली में कहा कि अब नए स्टार्टअप भी पंजीकरण कर इस कोष का लाभ उठा सकते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भारत ने वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने का परामर्श जारी किया है। वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास का ईमेल cons.caracas@mea.gov.in और आपातकालीन फोन नंबर है 5841295842888। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उनके निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया गया। फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए कराकस में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया।
Today, at my direction, the United States,
मेरे निर्देश पर अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे लोगों ने द्वितीय युद्ध के बाद से नहीं देखा था। कराकस में सैन्य बलों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया ताकि निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
श्री ट्रंप ने बताया कि जब तक वेनेजुएला की सत्ता सुरक्षित, उचित और न्यायसंगत हाथों में नहीं आती, तब तक अमेरिका वहां का शासन संभालेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की चर्चा के लिए कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थायी सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेताओं ने कल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से राजधानी ढाका में मुलाकात कर पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। अल्पसंख्यक नेताओं ने खालिदा जिया को एक मजबूत और किसी भी तरह का समझौता न करने वाली नेता बताया, जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।